शाम ढल चुकी थी। हवेली के बाहर दियों की कतारें जल उठी थीं, मगर भीतर का माहौल अब भी दिन की थकान ओढ़े हुए था। लंबे गलियारों में विश्वनाथ के कदमों की आवाज़ गूंजती चली आ रही थी, तेज ठोस, जैसे हर कदम किसी फैसले की तरफ बढ़ रहा हो। वो सीधे अपने कमरे की ओर आया, दरवाज़ा खोला। कमरा आधे अंधेरे में डूबा था। पर्दे खिड़की के सामने खिंचे हुए थे, सिर्फ एक कोने में रखे लैंप की मध्यम रोशनी फर्श पर फैल रही थी। कमरा खाली लगा। विश्वनाथ एक पल को रुका, उसकी नज़र अपने आप कमरे में घूम गई। बेड, अलमारी, कुर्सी, टेबल। श्यामली, नाम उसके होठों तक आया मगर आवाज़ नहीं बनी। असल में श्यामली वहीं थी, बस सामने नहीं, बेड के पास ज़मीन पर झुकी हुई। उसकी उंगलियों से उसकी अंगूठी फिसलकर बेड के नीचे चली गई थी। वो उसी को उठाने के लिए घुटनों के बल नीचे झुकी हुई थी। जैसे ही उसने विश्वनाथ के कदमों की आवाज़ सुनी, वो वहीं रुक गई, सांस रोककर। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो बाहर नहीं आई। विश्वनाथ ने जैकेट उतारकर कुर्सी पर डाली। उसके चेहरे पर हल्की झुंझलाहट उभर आई। वो कमरे से बाहर निकलकर गलियारे में गया। श्यामली कहाँ है? उसकी आवाज़ में तलखी थी, जिसे वो खुद भी महसूस कर रहा था। पास से गुजरते नौकर ने तुरंत जवाब दिया, जी वो तो ऊपर कमरे में ही है। विश्वनाथ रुक गया। कमरे में? उसने जैसे खुद से दोहराया। वो फिर से कमरे में लौटा। इस बार उसके कदम और तेज थे। दरवाज़ा थोड़ा जोर से बंद हुआ। पता नहीं कहाँ चली जाती है, वो खुद से बड़बड़ाया। न जाने खुद को क्या समझती है। बेड के नीचे श्यामली की आंखें फैल गईं। वो सांस तक नहीं ले पा रही थी। मुझे देखकर ऐसे बचती है, विश्वनाथ ने टाई ढीली करते हुए कहा, जैसे मैं कोई राक्षस हूँ। उसकी आवाज़ में गुस्सा था और कहीं ना कहीं चोट भी। पूरे घर में ढूंढना पड़ता है, वो आगे बोला। एक पल सामने, अगले पल गायब। श्यामली की पलकों में नमी भर आई। वो हर शब्द सुन रही थी, हर एक। वो बेड के नीचे और सिमट गई। तभी उसकी नज़र पड़ी अंधेरे में दीवार के पास, एक काला सा हिलता हुआ साया, कॉकरोच। उसका शरीर सिहर गया, डर उसके गले में अटक गया। वो खुद को रोक नहीं पाई। अ, अ, आवाज़ उसके मुंह से निकल ही गई और अगले ही पल वो झटके से बाहर की ओर निकली। विश्वनाथ ने आवाज़ की दिशा में पलट कर देखा और अगले ही सेकंड वो पूरी तरह चौंक गया। श्यामली अचानक सामने, घुटनों से उठती हुई, घबराई हुई, आंखों में डर, और बिना कुछ सोचे समझे वो सीधे उसकी तरफ बढ़ी। काकरोच, उसके मुंह से बस यही निकला और वो सीधे विश्वनाथ की बाहों में जा गिरी। विश्वनाथ का शरीर एक पल को जड़ हो गया, फिर उसके हाथ अपने आप उठे और उसने श्यामली को थाम लिया मजबूती से। कमरे में जैसे समय रुक गया। श्यामली की हथेलियां उसकी छाती पर थीं, उसकी सांस तेज थी, दिल जोर से धड़क रहा था। विश्वनाथ नीचे देख रहा था, उसके बाल, उसका कांपता हुआ कंधा, उसकी सांसों की गर्मी, उसका गुस्सा, सब जैसे हवा में खुल गया। कमरे की खामोशी गहरी हो गई और उस पल जब श्यामली उसकी बाहों में थी और विश्वनाथ उसे थामे हुए था, कमरा जैसे सांस रोके खड़ा था। श्यामली विश्वनाथ की बाहों में जकड़ी हुई थी, पूरी तरह नहीं लेकिन इतनी करीब कि उसके दिल की धड़कन उसकी पसलियों से टकरा रही थी। उसका शरीर अब भी कांप रहा था, डर से कम, इस अचानक करीबी से ज्यादा। छोड़िए, उसकी आवाज़ फुसफुसाहट से भी हल्की थी, शब्द नहीं, बस एक बेचैन एहसास। उसने दोनों हथेलियां विश्वनाथ की छाती पर रखी उसे पीछे धकेलने के लिए, लेकिन उसकी उंगलियों में ताकत नहीं थी, सिर्फ घबराहट थी और कुछ और भी, जिसे वो खुद नाम नहीं दे पा रही थी। विश्वनाथ ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी पकड़ और कस गई। एक हाथ उसकी पीठ पर था, उंगलियां उसके कंधे के नीचे टिक गईं, जैसे वो उसे गिरने से नहीं खुद से दूर जाने से रोक रहा हो। दूसरा हाथ उसकी बांह पर, मजबूत, स्थिर। श्यामली ने सिर झुका लिया, उसका माथा अनजाने में उसकी छाती से लग गया। उसकी सांसें तेज थीं, विश्वनाथ की सांस गहरी। दोनों की सांसों का ताप एक दूसरे में घुलने लगा। डर मत, विश्वनाथ की आवाज़ भारी थी, कमरे की खामोशी को चीरती हुई लेकिन मुलायम। श्यामली ने तुरंत सिर उठाया, उसकी आंखें सीधे उसकी आंखों से टकराईं। वहां गुस्सा नहीं था, ना सवाल, बस एक अजीब सा ठहराव और बहुत कुछ जो कहा नहीं गया। मैं डर नहीं रही, उसने कहा, मगर उसकी आवाज़ ने छूट पकड़ लिया। उसने फिर से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, इस बार ज्यादा बेचैनी से। उसका कंधा हिला, कमर मुड़ी, लेकिन विश्वनाथ ने उसे और करीब खींच लिया, ना जोर से ना बेरहमी से, बस इतना कि उसके और उसके बीच कोई खाली जगह ना बचे। श्यामली की सांस अटक गई। ऐसे मत करो, उसकी आवाज़ में अब घबराहट नहीं, कुछ और था, एक कंपकंपी। विश्वनाथ का जबड़ा तन गया, उसकी आंखें एक पल को उसके होंठों पर ठहर गईं,
फिर तुरंत वापस उसकी आंखों में, जैसे वो खुद को रोक रहा हो। तुम हमेशा भागती हो, उसने धीमे से कहा। आज रुक जाओ। श्यामली का दिल जैसे सीने से बाहर आने को था, उसके शरीर ने जवाब दे दिया उसकी सोच से पहले। वो अब भी उसे धकेल रही थी, लेकिन उसकी उंगलियां उसकी कमीज में उलझ चुकी थीं। कमरा और भी छोटा लगने लगा। लैंप की रोशनी उनके सायों को दीवार पर उलझा रही थी, एक दूसरे में घुले हुए। श्यामली ने आंखें बंद कर ली एक पल के लिए, और उसी पल उसने महसूस किया विश्वनाथ की पकड़ थोड़ी और मजबूत हुई, जैसे वो जानता हो अगर उसने अभी छोड़ा तो ये पल हमेशा के लिए छूट जाएगा। कमरे की हवा जैसे और भारी हो गई। श्यामली ने आंखें बंद कर रखी थी, बस एक पल के लिए, खुद को संभालने के लिए, लेकिन वही पल सब कुछ बदल गया। विश्वनाथ का सिर हल्का सा झुका, शायद उसे कुछ कहना था। श्यामली ने भी उसी वक्त सांस ली, गहरी कांपती हुई, और दोनों के बीच की दूरी खत्म हो गई। उनके होंठ बस हल्के से अनजाने में एक दूसरे से छू गए। ना कोई योजना, ना कोई इरादा, सिर्फ एक चूक जो बहुत गहरी थी। श्यामली की सांस टूट गई, उसका शरीर जैसे बिजली सा सिहर उठा। उसने तुरंत आंखें खोल दी और पीछे हटना चाहा। न, शब्द पूरा नहीं हुआ। विश्वनाथ भी एक पल को स्तब्ध था। उसकी उंगलियां उसके पीठ पर जम गईं, जैसे उसे गिरने से थाम रही हों या खुद को। वो अलग नहीं हुआ, बस उतना ही रुका जितना किसी चीज को समझने के लिए रुकते हैं। श्यामली का माथा उसके कंधे से टकराया। उसके होंठ अब भी गर्म थे उस छूने की याद से। ये, उसकी आवाज कांप रही थी, ये ठीक नहीं है। लेकिन उसके हाथ अब भी उसकी कमीज को थामे हुए थे। विश्वनाथ की सांस उसके बालों में उलझी। उसकी आवाज धीमी थी, करीब, बहुत करीब। मैंने जानबूझकर नहीं, उसने भी खुद को सही ठहराया, जैसे वो भी उसी पल से लड़ रहा हो। कुछ सेकंड सिर्फ धड़कनों के थे, फिर भी उसने उसे छोड़ा नहीं, और श्यामली छूटने की कोशिश करते हुए भी पूरी तरह छूट नहीं पाई। कमरे में कुछ टूट चुका था और कुछ खामोशी में और गहराई से जुड़ गया था।